नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू यादव से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। गुजरात में बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर में अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने विशाखापट्टनम जासूसी मामले में देशभर में तलाशी ली। केंद्र ने भारतीय कंपनियां द्वारा GIF की IFSC में प्रतिभूतियों को सीधा सूचीबद्ध करने के लिए नियमों में संशोधन किया। और आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार युवाओं की खेलों में भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध है। अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो गया है। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 5 सितंबर है, जबकि अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 9 सितंबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। 25 सितंबर को मतदान किया जाएगा। इस चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। ये जिले हैं गांदरबल, श्रीनगर, बनगाम, राजौरी, पुंछ और रियासी। सभी चरणों की सीटों के परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल 24 निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन पत्रों की जांच की गई। 279 नामांकनों में से 244 नामांकन वैध पाए गए। 18 सितंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव में 5,86,000 युवाओं सहित 23,27,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ रोधी अभियानों के अंतर्गत 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 3 आतंकवादी मारे गए। भारतीय सेना के चिनार कोर के अनुसार एक मुठभेड़ माछिल सेक्टर में और दूसरी तंगदार सेक्टर में हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक RR स्वेन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि तंगदार सेक्टर में एक आतंकवादी मारा गया और 2 आतंकवादी माछिल सेक्टर में मारे गए हैं। कल रात राजौरी जिले के लाठी गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक मुठभेड़ शुरू हो गई, जब सैनिकों ने आतंकवादी गतिविधियों के संधे में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। इलाके में 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं और घेराबंदी तथा तलाशी अभियान तेज करने के लिए अतिरिक्त बलों को इलाके में भेजा गया है। अधिकारियों ने कहा कि खराब मौसम के कारण ऑपरेशन में बाधा परीक्षा में आई है और मौसम में सुधार के बाद भी कार्रवाई जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में सुरक्षा बलों ने छापा मारकर 8 हथगोले बरामद किए हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने पाकिस्तान के साजिश वाले विशाखापट्टनम जासूसी कांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए कल देशभर में विभिन्न ठिकानों पर तलाशी की। NIA के अनुसार गुजरात, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में 16 ठिकानों पर व्यापक तलाशी की गई। ये सभी ठिकाने उन संदिग्ध लोगों से जुड़े हैं जिन्होंने भारत में जासूसी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान से पैसा लिया था। वित्त मंत्रालय ने प्रतिभूति अनुबंध विनियमन नियम 1956 में संशोधन किया है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनियां प्रतिभूतियों की अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों में GIFTIFSC में सीधी सूचीबद्ध करा सकेगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार नए संशोधन में भारतीय स्टार्टअप और उभरती कंपनियों को वैश्विक पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। साथ ही भारतीय कंपनियां अन्य बाजारों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेगी। मंत्रालय ने कल इस बारे में गजट अधिसूचना जारी की है। सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC को स्वैच्छिक आधार पर उम्मीदवारों की पहचान प्रमाणित करने के लिए आधारित सत्यापन की अनुमति दे दी है। पंजीकरण के समय और परीक्षाओं तथा भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान यह सत्यापन किया जा सकता है। यह निर्णय पूजा खेड़कर की अंतरिम उम्मीदवारी को रद्द करने और फर्जी पहचान दिखाकर सिविल सेवा परीक्षा में निर्धारित संख्या से अधिक प्रयास करने के लिए उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं से वंचित करने के बाद आया है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज नई दिल्ली में एसोचैम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय 2070 तक कार्बन उत्सर्जन का 70 शून्य करने के तंत्र का विकास है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि जलवायु और पर्यावरण परिवर्तन अब एक वैश्विक मुद्दा है, लेकिन सरकार देश को इसके प्रभाव से बचाने के लिए कई कदम उठा रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री पद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि पार्टी की कार्यशैली और नीतियों ने उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया है। चंपाई सोरेन कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उन्होंने झारखंड विधानसभा की सराय केला सीट से भी त्यागपत्र दे दिया है। श्री सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का उनका निर्णय झारखंड के लोगों के हित में है। गुजरात में मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश काफी कम हो गई है, लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से टेलीफोन पर बात की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य का जायजा लिया। उन्होंने राज्य प्रशासन को जनजीवन बहाल करने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। संवाददाता की खबर दी है कि स्वच्छता कार्य करने के लिए लगभग 35 स्वस्थ टीमों को बाढ़ प्रभावित जिलों में 5 दिन के लिए भेजा गया है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा, गंडक, कोसी और महानदी सहित प्रमुख नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खगड़िया, भागलपुर, कटिहार के कुछ नए क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने त्रिपुरा के 4 जिलों में बाढ़ के प्रकोप का आकलन शुरू कर दिया है। केंद्रीय जल आयोग के निदेशक महेश कुमार के नेतृत्व में इस दल ने गोमती जिले का दौरा किया और प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। अपर जिलाधिकारी विनय भूषण दास ने के अनुसार गोमती जिले को 1,100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ में आज मूसलाधार वर्षा होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम एजेंसी ने कहा है कि अगले 7 दिन के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज वर्षा का अनुमान है। इस बीच दिल्ली के विभिन्न भागों और आसपास के विभिन्न इलाकों में कल रात और आज सुबह तक मध्यम से तेज वर्षा हुई। इस बारिश के कारण विभिन्न इलाकों में जलभराव से यातायात बाधित रहा। पश्चिम नेपाल में लगातार वर्षा के फलस्वरूप भूस्खलन के कारण सम्फेबागार मर्तदी रोड पर बाधा उत्पन्न हुई है। इस वर्ष 10 जून से विभिन्न भागों में मॉनसून की वर्षा के कारण बाढ़ और भूस्खलन जैसी विभिन्न आपदाओं में कुल 210 लोगों की मौत हुई है। आज दोपहर बाद तक बाढ़ के कारण 480 मकान जलमग्न हो गए। बाढ़ में 972 पशुओं की भी मौत हुई है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने सभी नागरिकों को कम से कम एक घंटा खेल को समर्पित करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज और का निर्माण करता है। श्री मांडविया ने सभी नागरिकों से आज राष्ट्रव्यापी उत्सव में भागीदारी करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार खेलों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है और युवाओं की खेलों में भागीदारी और प्रतिभा प्रदर्शन करने के लिए पूर्ण सहयोग दे रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने खेल दिवस के अवसर पर कहा कि उनकी सरकार राज्य में प्राथमिकता के साथ खेलों को बढ़ावा दे रही है। पैरालंपिक खेलों का कल फ्रांस की राजधानी पेरिस में शानदार शुभारंभ हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने पेरिस में एक रंगारंग समारोह के दौरान खेलों की शुरुआत की घोषणा की है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज नई दिल्ली में डिजिटल अर्थव्यवस्था सम्मेलन को संबोधित किया। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।